नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू से हेटौड़ा की ओर जा रही सुमो दुर्घटना में हुई 6 लोगों की मौत। न्यायपालिका पर क्रमबद्ध और योजनाबद्ध हमलों का न्याय पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत का कथन। पूरे देश में आने वाले 2 महीनों के दौरान सामान्य से कम बारिश होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। और अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में स्थित तेल भंडारों में निवेश करने की अनुमति देने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। भीमफेदी कुलेखानी काठमांडू सड़क खंड अंतर्गत भीमफेदी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 जूरी खेत स्थित सड़क पर आज शाम को हुई सुमो दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। काठमांडू से हेटौड़ा की ओर जाती हुई सुमो की हुई दुर्घटना में घायल 9 में से 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों का शिनाख्त होना बाकी है, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर ने दी। पुलिस के मुताबिक घायलों का उद्धार कर उन्हें हेटौड़ा अस्पताल पहुंचाया गया था, बाकी 3 घायलों का इलाज वहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से आज थारू कल्याण कारिणी सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री कार्की ने यह धारणा रखी कि संविधान और कानून में व्यवस्थित हो चुके अधिकारों का उपयोग कोई रोक नहीं सकता। मूल आयोजक समिति के संयोजक एवं थारू कल्याण कारिणी सभा के अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी ने प्रधानमंत्री कार्की को माघ 1 गति को टूडी खेल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र सौंपा। इस अवसर पर अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि संविधान बने 10 साल बाद भी थारू समुदाय के लिए नागरिक सेवा में आरक्षण का विषय सुनिश्चित नहीं हुआ है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत ने कहा कि सामाजिक संजालों पर अदालत और न्यायाधीशों पर सुनियोजित रूप में प्रहार कर न्यायालय को कमजोर बनाने के षड्यंत्र को लेकर अदालत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में आज विभिन्न संचार माध्यमों के संपादकों के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रधान न्यायाधीश रावत ने ये बात कही। ये बताते हुए कि देश की मौजूदा तरल और गंभीर स्थिति में न्यायालय पर श्रृंखलाबद्ध और नियोजित प्रहार से न्याय पर गहरा असर पड़ सकता है, उन्होंने इस ओर सचेत रहने का सभी से आग्रह भी किया। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल से मुस्लिम समुदाय के 3 अलग अलग समूहों के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय में भेंटवार्ता की। भेंट में मुस्लिम समुदाय से राष्ट्रीय मुस्लिम समन्वय समिति के पदाधिकारियों और लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रतिनिधियों ने आज ज्ञापन पत्र सौंपा। मौके पर गृहमंत्री अर्याल ने कहा कि एक दूसरे के धर्म और संप्रदाय पर खलल पहुंचाने वालों को सरकार और गृह मंत्रालय तुरंत कार्रवाई के दायरे में लाने के लिए कटिबद्ध है। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक कल के लिए बुलाई गई है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुर में दोपहर 1 बजे होने वाली इस बैठक में कांग्रेस का 15वां महाधिवेशन, आसन्न राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव सहित समसामयिक विषय पर चर्चा होगी। ये जानकारी पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल ने दी। इससे पहले कार्यकारी समिति की शुक्रवार की बैठक में पार्टी का 15वां महाधिवेशन आगामी वैशाख 28-31 तक काठमांडू में करने का निर्णय लिया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय में गत आश्विन 29 को 54% महाधिवेशन प्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराए गए विशेष महाधिवेशन का प्रस्ताव भी विचाराधीन अवस्था में है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा है कि नेपाल को डिजिटल हाईवे पर आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। आईसीटी अवार्ड 2025 के विजेताओं के साथ आज मंत्रालय में हुई चर्चा में मंत्री खरेल ने डिजिटल नेपाल के लिए नीतिगत सुधार के काम हो रहे हैं इसका उल्लेख किया। मंत्री खरेल ने सूचना प्रविधि क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचने के लिए पुल की भूमिका निभाने और संपर्क मंत्रालय के रूप में संचार मंत्रालय की भूमिका निभाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि सूचना प्रविधि के विकास के लिए बजट पर्याप्त नहीं होने, नीतिगत उलझनों के साथ साथ मौजूदा नीतियों के क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण इस क्षेत्र का उचित विकास और प्रगति नहीं हो सकी है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड के बीच आज भेंटवार्ता हुई। ललितपुर के चासल स्थित निजी निवास में उनके बीच हुई मुलाकात में समसामयिक विषय पर बातचीत हुई। ये जानकारी संयोजक प्रचंड के निजी सचिवालय के प्रमुख गोविंद आचार्य ने दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने पार्टी समायोजन और चुनाव केंद्रित दो उपसमितियों का गठन किया है। रासोपा की आज हुई केंद्रीय समिति की बैठक में आगामी फागुन 21 गति को प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार चयन के लिए पार्टी उपसभापति डॉ स्वर्णिम वागले की संयोजकत्व में उम्मीदवार सिफारिश उपसमिति गठन करने का निर्णय किया गया। पार्टी प्रवक्ता मनीष झा ने बताया कि उपसमिति को योग्य उम्मीदवार चयन और प्रक्रिया की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई है। उपसमिति के सदस्यों का मनोनयन पार्टी सचिवालय द्वारा किया जाएगा। इसी तरह पार्टी एकता और समायोजन प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचाने के उद्देश्य से पार्टी महामंत्री कविन्द्र बुरला कोटी की संयोजकत्व में पार्टी एकता समायोजन उपसमिति गठन का निर्णय किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकार ने आगामी चुनाव प्रयोजन के लिए 17,51,00,00,000 रुपए का बजट का स्रोत सुनिश्चित किए हैं। आगामी चुनाव प्रयोजन के लिए आवश्यक बताए जाने वाले बजट की मांग संबंधी निकायों द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर सरकार ने 17,51,00,00,000 रुपए खर्च करने का स्रोत सुनिश्चित किया है। अर्थ मंत्रालय ने बताया है कि आगामी चुनाव प्रयोजन के लिए गृह मंत्रालय को 10,39,00,00,000 और निर्वाचन आयोग को 6,72,00,00,000 रुपए का बजट स्रोत सुनिश्चित किया गया है। अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता एवं सह सचिव टंक प्रसाद पांडे ने बताया कि अभी निर्वाचन आयोग और गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार खर्च करने के लिए बजट का स्रोत सुनिश्चित किया गया है। साथ ही चुनाव प्रयोजन के लिए अन्य निकायों की मांग या आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त बजट जारी करने के लिए अर्थ मंत्रालय प्रतिबद्ध है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने अभी कुछ महीनों तक सामान्य से कम वर्षा होने का आकलन सार्वजनिक किया है। सार्वजनिक आकलन के अनुसार इसी पूर्व 17 से आगामी फागुन 16 गति तक की अवधि में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान लगाया गया है। विभाग के सूचना अधिकारी दिनकर कास्त के अनुसार पिछले दिसंबर में भी सामान्य से कम वर्षा हुई थी। इसी पूर्व 17 से फागुन 16 गति तक 2 महीनों की अवधि में देश के अधिकांश भूभागों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना बताते हुए उन्होंने कहा कि सुदूर पश्चिम कर्नाली प्रदेश के उत्तरी भूभाग और गंडकी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भूभाग में सामान्य से कम, सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि ये आकलन विश्व मौसम संगठन के विश्व स्तरीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर जलवायु सूचना उत्पादन करने वाले केंद्रों की जलवायु प्रतिरूप के आकलन के आधार पर तैयार किया गया है। काठमांडू महानगर पालिका को और अधिक सुरक्षित और प्रविधि अनुकूल बनाने के लिए महानगर पालिका ने अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर तेजी से काम किया है। हर वार्ड में दृश्य के साथ साथ आवश्यक डेटा प्रदान करने के उद्देश्य से महानगर ने सीसीटीवी कैमरों की स्थापना को तेज किया है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने झापा के भद्रपुर विमान क्षेत्र में हुई बुद्ध एयर के विमान दुर्घटना के संबंध में आंतरिक जांच करने का निर्णय किया है। शुक्रवार रात काठमांडू से उड़ान भरकर भद्रपुर पहुंचा 72 सीट क्षमता वाला एटीआर विमान लैंडिंग के दौरान हुई दुर्घटना को प्राधिकरण ने दुर्घटना बाह्य घटना के रूप में वर्गीकृत करते हुए आंतरिक जांच करने का फैसला किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में स्थित तेल भंडारों और परियोजनाओं में सीमित निवेश और संचालन की अनुमति दी जाएगी। ये निर्णय दशकों से चले आ रहे सख्त आर्थिक प्रतिबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कंपनियों के लिए वेनेजुएला के तेल और गैस क्षेत्र के 6 महीने की अवधि के लिए सीमित लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है। इसका उद्देश्य वेनेजुएला की तेल उद्योग को पुनर्जीवित करना और वैश्विक ऊर्जा बाजार में आपूर्ति बढ़ाना बताया जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमाण्डू से हेटौरा की ओर जा रही सुमो दुर्घटना में हुई 6 लोगों की मौत। न्यायपालिका पर क्रमबद्ध और योजनाबद्ध हमलों का न्याय पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत का कथन। पूरे देश में आने वाले 2 महीनों के दौरान सामान्य से कम बारिश होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान और अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में स्थित तेल भंडारों में निवेश करने की अनुमति देने की ट्रंप प्रशासन की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।